नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कल शाम संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि पश्चिम एशिया संकट पर सभी दलों के सदस्यों के सभी प्रश्नों और चिंताओं का सरकार ने समाधान किया है।
मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ कि सारे विपक्ष ने जो जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा, सरकार ने जवाब दिया। और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सब ने कहा है।
सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में पश्चिम एशिया स्थिति पर दिए गए संबोधन के बाद हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार ने ईरान इसराइल अमेरिका संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए ईंधन आपूर्ति श्रृंखला, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों पर रणनीतियां विकसित करने के वास्ते 7 सशक्त समूहों का गठन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय योगदान को मंजूरी दे दी है, जिससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि और पेरिस समझौते के तहत देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिला है। भारत ने 2005 के स्तर से 2035 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 47% तक कम करने का संकल्प लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है।
प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
मंत्रिमंडल ने आवेदन वीजा, विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2026 के बाद 5 वर्ष के लिए भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल का शोधन करने की क्षमता है। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराहट में खरीदारी से बचने का आग्रह किया गया है। नई दिल्ली में कल पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुच्चेरी और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा कि जांच के बाद 2,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। प्रमुख नामों में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्याकांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मागपुरम जिले में सड़क दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह हादसा एक निजी ट्रैवल बस की ट्रक से टक्कर से हुआ। घटना में घायल 20 यात्रियों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं। वे वहां G7 सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉ जयशंकर एबी डेस वॉक्स डे सैडनी में आयोजित बैठक के से अलग विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। देश में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।